ओम शांति।
आज झाड़ का चित्र है, ये भी साक्षात्कार के आधार से बनाया गया। झाड़ का चित्र, झाड़ के चित्र में तीन भाग दिखाए गए। एक भाग वो जो लेफ्ट साइड जा रहा है, और दूसरा भाग राइट साइड जा रहा है, और तीसरा भाग जो आदि से लेकर के अंत तक अपने ही धर्म में पक्के रहते हैं, जिसे कहते हैं तना। ये है टाल टालियां। तो लेफ्ट साइड में इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद, लेनिन, स्टालिन का नास्तिक दिखाया गया, और राइट साइड में बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म और आर्य समाज, ये राइट साइड में दिखाया गया। और आदि से लेकर के जो अंत तक जो तने के रूप में दिखाया गया, ये वो आत्माएं हैं जो कन्वर्ट नहीं होती हैं, प्रभावित नहीं होती हैं किसी से। आदि से लेकर के अंत तक अपने ही धर्म में पक्की बनी रहती हैं। तो इसमें दिखाया गया नीचे जो लेफ्ट साइड है, माना इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद, ये लेफ्ट साइड के जो धर्म है, बाम मार्गी धर्म, उनके नीचे दिखाया गया है ब्रह्मा को, और राइट साइड के जो धर्म है उनके नीचे दिखाया गया है मम्मा को। तो ये ब्रह्मा चक्रति जो दिखाए गए हैं, ये वास्तव में सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज नहीं है। इनको आदिदेव, आदिदेवी या एडम, ईव या जगत पिता, जगत अम्मा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मम्मा माना सरस्वती, सरस्वती नदी जो बीच में ही आती है और बीच में ही लोप हो जाती है। बाबा ने कई बार मुझे बोला, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी, टीचर होकर के बैठती थी। 10 वर्ष से रहने वाला माना कोई पुरुष था, ध्यान में जाती थी, कोई माता थी, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। तो उनमें शब्द आया ना, उनमें शब्द का मतलब दोनों में परमात्मा शिव की प्रवेशता होती थी, उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे। तो कहने का मतलब मम्मा बाबा से भी पहले कोई बच्चे थे जो यज्ञ के आदि में थे, सन 36-37 में। तो जहां पर मम्मा को दिखाया गया, वहां समझिए जैसे ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब तो आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ब्रह्म माना बड़ी, माँ माना माँ। तो माँ तो बड़ी है, लेकिन दाढ़ी मूछ वाली को माता नहीं कहेंगे। कभी ऐसा सुना कभी? भक्ति मार्ग में तो पूजा भी नहीं होती दाढ़ी मूछ वाली को, पुरुष रूप में नहीं होती, स्त्री चोला ही होना चाहिए। तो इस तरह जो ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, जगत अम्मा, मम्मा के बदले समझो, माना ब्रह्मा के जो मम्मा जहाँ पर बैठी है वहाँ समझो ब्रह्मा, और जहाँ पर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं वहाँ समझो प्रजापिता, जगत पिता, एडम, आदम। तो यह है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज। बीज के दो दल होते हैं, जैसे चने का, मटर का, दो भाग होते हैं ना, और उसके बीच में से क्या निकलता है? अंकुर निकलता है। तो माना ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज हो गए माता पिता, और जो अंकुर हो गया वो हो गया परमात्मा शिव। तो यहाँ पर प्रजापिता, जहाँ ब्रह्मा बताया ना, ऐसा समझे यहाँ पर कौन बैठे है, प्रजापिता माने बाप बैठा है। तो बाप को इधर क्यों बताया, लेफ्ट धर्म की तरफ ही क्यों बताया, जो ये बाम मार्गी धर्म है इनकी साइड ही बैठा हुआ क्यों बताया? नहीं, वो इसलिए बताया क्योंकि ये है यादव संप्रदाय। ये सब क्या है? यादव संप्रदाय। तो यादवों का हेड भक्ति मार्ग में किसको दिखाते हैं? कृष्ण को। और बाबा मुरली में क्या बोलते हैं, यादवों का हेड है शंकर, क्योंकि ये है विधर्मी आत्मा, विदेशी भी है और विदेशी के साथ साथ विधर्मी आत्माएं भी हैं। तो ये जितने भी विदेशी हैं, जितने भी विधर्मी आत्माएं हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला कौन होता है? बाप होता है। असुर जितने भी होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं? बाप से कंट्रोल होते हैं। और ये है भारतवासी धर्म, माना पहले तक आपको मान्यता देने वाले। ये क्या है? ये तो है विदेशी, और विदेशी के साथ साथ विधर्मी आत्माएं हैं, और ये है स्वदेशी है, लेकिन स्वदेशी के साथ साथ क्या है, ये विधर्मी, क्योंकि इनकी धारणाएं अलग अलग हैं। लेकिन पवित्रता को मान्यता ये भी देते हैं, ये जो विधर्मी है माना बाम मार्ग के धर्म है, विदेशी है, ये पवित्रता को मान्यता नहीं देते। तो इन विदेशियों को कंट्रोल करने के लिए किसको निमित्त बनना पड़ता है? शंकर को, क्योंकि विष से विष मारा जाता है, लोहे से लोहा काटा जाता है। तो इन यादवों का विनाश करने के लिए भी किसको क्या बन करके आना पड़ता है? परमात्मा शिव को यदवंशी रूप धारण करके आना पड़ता है, तब ये कंट्रोल में आते हैं। कहते ना, लातों की देवी बातों से नहीं मानती। तो ये बातों से नहीं मानते, ये प्यार से मानने वाले नहीं है। इनको तो धर्मराज की जब तक मार ना पड़े, धर्मराज के धंधे ना खाए, तब तक इनका सुधार। तो इसलिए दिखाया गया है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के जो बीज है वो मातृपिता दिखाया गया, बाप माने प्रजा पिता, सारी प्रजा का पिता बीज। तो बीज जो है वो आदि में होता है, मद में बीज नहीं होता। बीज का काम क्या होता है? बीज जो है वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है ना, तो बीज जो है वो धरनी में बोया जाता है। कहते ना, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो जब तक वो बीज धरनी में नहीं मिल जाता, माना अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर देता, तब तक बढ़िया बाग नहीं तैयार होता। तो यज्ञ के आदि में वो बीज प्रजापिता उसने आपको अपने आप को खाक कर दिया। इसलिए बाबा ने भी मुरली में बोला, अभी देखेंगे लाखों में से कोटों में से कौन निकलते हैं, राख कौन बनते हैं, ये भी देखेंगे। तो राख का मतलब अपने अस्तित्व को बिल्कुल खत्म कर देना, पद मान मर्यादा जिसको कुछ भी ना, बिल्कुल बैगर, फुल बैगर। तो यज्ञ के आदि में वो बीज प्रजापिता वो गुप्त हो गया। इसलिए बाबा ने जो मन में बोला, इस रथ को कहाँ से पकड़ा? पूर्वी बंगाल से पकड़ा, पूरब से पकड़ा। तो यज्ञ के आदि में जो पांड बजाया, पहले पहले जिनमें प्रवेशता हुई, गीता माता और गीता पति भगवान प्रजापिता प्लस ब्रह्मा, जब प्रजापिता ब्रह्मा बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आदिदेव आदिदेव, ब्रह्म माना बड़ी और मा माना माता। तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज प्रजापिता, सारी प्रजा का पिता और सारी प्रजा की माता, तो उसे बोला जाता प्रजापिता ब्रह्मा, जैसे मात पिता कह देते हैं ऐसे ही प्रजापिता ब्रह्मा, जैसे बाप दादा कहते हैं तो बाप में दादा सर्वेश है। मनुष्य सृष्टि रूपी बीज प्रजापिता, उसमें ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल प्रवेश करती है, प्रवेश तो दोनों में ही करती है, क्या ब्रह्मा की सोल दादा लेखराज जी की सोल जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा माना जगत पिता जगदम्बा दोनों में ही प्रवेश करती है, लेकिन जब बाप दादा कहा जाता है तो एक ही तन में दोनों आत्माओं की बात आती है, जब मात पिता कहा जाता है तो माता का स्वरूप अलग और पिता का स्वरूप अलग। तो इस तरह जो यज्ञ के आदि में भी बीज था, क्योंकि बीज तो आदि में ही होना चाहिए, तो प्रजापिता यज्ञ के आदि में था, बीज था, लेकिन क्या हुआ? लुप्त हो गया। इसलिए मुरली में भी बाबा ने बोला है त्रिमूर्ति के चित्र में ज्ञान लेने वाले का चित्र है, ज्ञान देने वाले का चित्र नहीं है। माना वो यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता वाली आत्मा थी वो गुप्त हो गई, तो गुप्त होना भी तो कल्याणकारी हुआ ना। अगर आदि में ही प्रत्यक्ष हो जाते तो हम आपको क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, सब कुछ तो है, सब कुछ तो जो 300-400 आई थी यज्ञ के आदि में वही ले जाती, तो फिर हम क्या करते? तो इसलिए हम बच्चों के लिए वो बीज गुप्त हो गया, लेकिन वो जब गुप्त हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष होता है, अंत में वो बीज जो है वो प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह ये प्रजापिता को दिखाया गया है लेफ्ट साइड, इनको सबको कंट्रोल करने के लिए। और ये जो दिखाया गया भारतीय धर्म दिखाए गए, तो भारतीय धर्म जो है इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा वो निमित्त बनते हैं। ये जो है इनको बाप इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि ये गॉड फादर को तो मानते हैं, इसलिए बाबा ने मुरली बोला विदेशी लोग गॉड फादर को तो मानते हैं लेकिन गॉड मदर को नहीं मानते, इसलिए इनकी जो है मदर के प्रति नजर कैसी रहती है फ्लैट वे से देखते हैं, ये शुद्ध भावना से नहीं देखते, इनकी दृष्टि में क्या होता है भेदभाव होता है। और ये भारतवासी जितने धर्म है ये मात्र प्रधान देश है, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीताराम मात्र प्रधान देश है, माता पिता की भूमि है, इसलिए परमात्मा को उस भारत भूमि पर ही आना पड़ता है। तो ये है भारतीय धर्म, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मा माता वो निमित्त बनती है। तो ये माता पिता जो है जन्म तो सबको देते हैं क्योंकि सब धर्मों के माँ बाप है, हर धर्म में इनका गायन है, एडम ईव आदम हवा आदिदेव आदिदेवी और जगत पिता जगत अम्मा, तो सब धर्म जितने भी धर्म है 10 धर्मों के बीज तो यही है। वो 10 तो इस बीज में से ही सारा वृक्ष निकलता है, उसकी निशानी दिखाई गई है, आपने देखा होगा एक ही पेड़ में से कभी कभी दो दो भी निकल आते हैं, बरगद के पेड़ में से कहीं पर नीम का पेड़ दिखाई देता है, पीपल के पेड़ के साथ पीपल भी निकल आता है, मतलब एक ही वृक्ष में कई कई वृक्ष निकल आते हैं तो यादगार कहाँ की है? यही की है, क्योंकि सब धर्मों के ये बीज है, सबके बाप है। इसलिए बाबा मुरली बोलता है ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम तो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी हो, लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ, तो उसका उसकी निशानी जो कलकत्ता में दिखाई है बन एंट्री। बाबा कई बार मुस्लिम बन एंट्री का मिसाल दिखाते हैं ना, मुस्लिम बोलते हैं ना, तो मतलब कहने का कि उसमें दिखाया है सब तालियां जो है सब जड़े दिखाई है, लेकिन जो मूल जड़ है वो गुप्त हो गई। तो मूल फाउंडेशन अगर गुप्त हो जाए तो झाड़ खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मूल फाउंडेशन खत्म हो जाए, क्योंकि जितने भी दूध के वृक्ष होते हैं इनकी जड़ें कभी सड़ती नहीं है, नीचे नमी मिलती है ना तो हरी रहती है, लेकिन दिखती नहीं है। तो जब वो जड़ ऊपर आती है तो ये जितनी भी जड़ें हैं फिर ये क्या हो जाती है? इनके मुकाबले तो ये कमजोरी पड़ जाएंगी ना। तो बाबा ने मुरली बोला है कि ऊंच से ऊंच बाप में ऊंच से ऊंच की प्रवेशता होती है, उसके मुकाबले जितने भी धर्म हो गए सब क्या हो गए? नीच से नीच हो गए। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन ये क्या हो गए? नीच हो गए, क्योंकि मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है प्रजापिता ब्रह्मा, उनमें परमात्मा शिव की ही सोच प्रवेश करती, क्योंकि ऊंच है, और उनके मुकाबले मुझे नीच से नीच जो सेकंड नंबर का जो नारायण हुआ वो क्या हुआ? नीच हो गया ना, तो इनमें कौन सी सोल प्रवेश करेगी? इस्लाम धर्म की आत्मा है, इस्लाम धर्म का आधार, तो उसमें कौन सी आत्मा प्रवेश करेगी? द्वापर में इब्राहिम ही प्रवेश करेगा। तो ये और जो धर्म है ये नीच से नीचे जाते हैं। इसलिए बाबा ने भी मुरली में बोला है कि क्राइस्ट आदि की आत्मा का प्रवेश भी हम 33 करोड़ में से एक एक में होता है। क्राइस्ट आदि की आत्मा का प्रवेश माना, क्राइस्ट माना इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि जितने भी धर्म है उन सब की वो सब आत्माएं प्रवेश करेंगी। किन में? हम 33 करोड़ आत्माओं में। हाँ, जो जिस का घोड़ा होगा उसमें वैसी ही प्रवेशता हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से आने वाली जो सोल है जो प्रवेश करती है, जिसमें प्रवेश करती है तो वो कमजोर होगा तब तो उसके अंदर वो प्रवेश करेगी। पावरफुल है तो उसके अंदर कौन सी सोल प्रवेश करेगी? पावरफुल ही करेगी। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उसमें कौन सी सोल प्रवेश करेगी? ऊंच बाप प्रवेश करेगा। तो इसलिए बताया आगे चल करके प्रवेशता भी बड़ी जोर शोर से होनी है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है, यहाँ पर जो मम्मा बाबा दिखाए गए हैं वो मम्मा बाबा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है। रामकृष्ण वाली आत्मा वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है। तो इसमें जड़े दिखाई गई है, चार जड़े लेफ्ट साइड और चार जड़े राइट साइड दिखाएगी, और उनके जो ये दो बीज मातृका, तो ये 10 हो गए ना। तो 10 इस दुनिया में जितनी भी 500 करोड़ की दुनिया है, हर आदमी किसी न किसी धर्म को मानता जरूर है। नास्तिक से नास्तिक भी होगा तो भी उसके मुख से दुख में ओ गॉड जरूर निकलेगा। तो ये जो जड़ों पर बैठे हुए ब्रह्मा वत्स है, ये है आधार मूर्त आत्मा है। क्या जड़ों पर दिखाया गया, ये यज्ञ के अंदर ही आत्माएं हैं। ऐसा मत समझ लेना कि दुनिया में बैठे हुए। इसलिए कई बार बाबा मुरली बोलते हैं यज्ञ में क्यूर ब्राह्मण चाहिए, विधर्मी भी आकर ब्राह्मण बनेंगे। इसका मतलब जरूर विधर्मी आत्माएं भी हमारे यज्ञ के अंदर ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में मौजूद है। तो ये जड़ों पर बैठे हुए जो ब्रह्मा वत्स हैं, ये जाकर के द्वापर में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह बनेंगे। तो ये है आधार मूर्त आत्मा है। गलती से इनको यज्ञ के अंदर अष्टरतन समझ लिया है, अष्टरतन अलग, और ये आठ नारायण जो सीढ़ी के चित्र में चतुर्थ में कितने नारायण होंगे, आठ नारायण, आठ गद्दियां होंगी, तो ये आठ गद्दियों के मालिक होंगे। लेकिन ये अष्टरतन बनने वाली आत्माएं नहीं है, क्योंकि जो अष्टरतन बनने वाली आत्माएं है वो तो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, ये तो कम जन्म लेने वाली आत्माएं है ना, तो इनके जन्म भी कम है, कलाएं भी इनकी कम है। तो ये है आधार, आधार मूर्त आत्माएं। जब ये द्वापर में पहुंचेंगी, माना जब पहली जड़ पर बैठा हुआ जो ब्रह्मा वत्स है, ये जब जन्म लेते लेते द्वापर में पहुंचेगा, तो जो परम धाम से इब्राहिम आएगा वो इसमें प्रवेश कर जाएगा। इसमें प्रवेश करे जो हमारे यज्ञ के अंदर ब्राह्मण है, इस्लाम धर्म का पाठ बजाने वाली आत्मा होगी, वही आत्मा जब जन्म लेते लेते द्वापर में पहुंचेगी, तो जैसे ही द्वापर शुरू होगा वैसे ही ऊपर से आने वाली सोल परम धाम से बीज रूप सोल, बीज भी दो हैं, एक वो बीज जो डायरेक्ट परम धाम से आते हैं द्वापर से, और एक वो बीज है जो जड़ों के नीचे दिखाए गए इनको जन्म देने वाले। तो ये जो जड़ों को जन्म देने वाले बीज हैं, ये तो 84 जन्म देने वाले हैं, जन्म देने वाले बाप, ये पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। और जो ऊपर से डायरेक्ट परम धाम से जो उतरेंगी, द्वापर से शुरू होगा जिनका आना, वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, ये 84 जन्म लेने वाली आत्माएं है जड़ों पर बैठी हुई है, ये भी कम जन्म लेने वाली है। अब वो तो है ही कम जन्म लेने वाली, वो तो सतयुग त्रेता में आते ही नहीं है। तो इस तरह जो दिखाया गया जड़ों पर बैठा हुआ ब्रह्मा वत्स, पहली जड़ आपने देखी लंबी और खूब मोटी तकड़ी है, तो जो पहली जड़ पर बैठा हुआ ब्रह्मा वत्स है, जब जन्म लेते लेते यहाँ पर पहुंचेगा, तो ऊपर से इब्राहिम आएगा और इसमें प्रवेश कर देगा और इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो वो जो आत्मा होगी यज्ञ के अंदर होगी ना, तो कैसे पहचानेंगे, तो इसमें पहचान बताइए। हर धर्म के गुण धर्म, तो जितने भी 10 धर्म है ना, इनके गुण धर्म है। तो पहला धर्म है देवता धर्म, देवता धर्म है ना, उनके अंदर जो देवता धर्म की आत्माएं होंगी, उनका मुख्य गुण धर्म क्या होगा, सहनशीलता, और सहनशीलता के साथ साथ पवित्रता। जिस आत्मा में जितनी सहनशीलता होगी उसके अंदर पवित्रता भी जरूर होगी। तो सबसे ज्यादा सहन किसने किया हमारे यज्ञ में, ब्रह्मा बाबा ने जितना सहन किया उतना किसी ने सहन नहीं किया। करणहार का पाठ बजाना, करके दिखाया, सहन किया। कोई भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ये नहीं कह सकती कि ब्रह्मा बाबा ने हमको इसने प्यार नहीं दिया, लेकिन ये भी तो कोई प्रूफ नहीं है ना कि ब्रह्मा बाबा को किसी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ने दुख ना दिया हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर दुख नहीं दिया तो फिर ब्रह्मा बाबा का हार्ट फेल कैसे हो गया, हार्ट फेल हुआ तो जरूर कोई ना कोई ऐसे आखिरी बच्चे थे जिन्होंने ब्रह्मा जैसी कृष्ण जैसी श्रेष्ठ सोल को क्या किया, दुख दिया, तब तो हार्ट फेल हुआ। तो भक्ति को उधर दिखाते हैं गांधी को, नाथूराम गौड़से ने गोली मारी। फिर दिखाते हैं कृष्ण को किसी बहेलिया ने पांव में तीर मारा, शास्त्रों में दिखाते हैं। और फिर यहाँ दिखाते कि ब्रह्मा बाबा को किसी ने जरूर दुख दिया है, तब तो हार्ट फेल हुआ ना। पहला बुलेटिन जो निकला था जब बाबा ने शरीर छोड़ा, उसी समय बताया कि बाबा के दिल में दर्द हुआ। तो दर्द कैसे हो जाएगा, किसी ने दर्द दिया होगा तब तो दर्द हुआ होगा उनको। तो बातें मिलती हैं, तो ब्रह्मा जैसे श्रेष्ठ सोल को जिन्होंने दुख दिया तो वो तो सहन किया ना उसने, तो सहनशीलता का गुण किसके अंदर होता है, माताओं के अंदर होता है। इसलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं माता कुमाता न भवती, पूत कपूत हो जाते हैं, बच्चे नालायक निकल जाते हैं, जो बाबा मुरली बोलते हैं माँ की चोटी पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। लेकिन माँ कभी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालती, भले वो उसको थोड़ा सुधारने के लिए जांचती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होता है, अंदर उसके सुधार के लिए ही सोचती है कि इसका कैसे ना कैसे सुधार हो। तो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, उसने भरा पार्ट बजाया, प्यारी प्यार दिया, लेकिन क्या होता है, बिच्छू जो होता है ना वो डंक कहाँ पर मारता है, कोमल स्थान पर डंक मारता है। तो ब्रह्मा जैसा कोमल स्थान और कहाँ पर मिलेगा, कृष्ण जैसे चोल जैसा ब्रह्मा कोमल स्थान कहाँ मिलेगा। तो बिच्छू टिंडलों ने क्या किया, डंक मारा। तो कहने का मतलब सहनशीलता का गुण किसमें था, माताओं में सबसे ज्यादा सहनशीलता होती है, शीतलता जो चंद्रमा को दिखाते हैं, जितना सूर्य गर्म होता है उतना ही चंद्रमा शीतल होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जोड़ी बनाते हैं तो क्या कहते हैं, एक शीतल होना चाहिए और एक गर्म होना चाहिए, दोनों ही एक जैसे होंगे तो क्या होगा, तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो ब्रह्मा में शीतलता का गुण था, शीतल पाठ बजाया, लेकिन शीतलता जो होती है, चंद्रमा जो होता है उसके समय पर क्या होता है, कीड़े मकोड़े पलते रहते हैं, वो असुर पलते रहे, तो इनमें सहनशीलता और साथ साथ पवित्रता, तो देवताओं में मुख्य गुण बताया। और यह है क्षत्रिय धर्म, क्षत्रियों का मुख्य गुण क्या बताया, सामना करना, जो बाबा मुरली बोलते हैं सागर की दो विशेषताएं होती हैं, सामना करना लहरों से जरूरत पड़ने पर और क्षमा भी लेना। तो भारत जो है कोई कैसा भी आया उसने क्षमा लिया और जरूरत पड़ी तो सामना भी किया, जैसे पृथ्वीराज चौहान टक्कर ली, तो सामना करने की शक्ति और साथ साथ संभालने की शक्ति, ये गुण जो होता है बाप में होता है। और वैसे भी बताते हैं कि देवताओं की रक्षा जो है हमेशा किसने की, क्षत्रियों ने की। तो ये तो हो गया माता पिता जैसा ग्रुप। इनका सेकंड नंबर का नारायण राइट साइड से जो ये जड़ दिखाई गई ना, ये जब पहुंचते यहाँ पहुंचे तो ऊपर से महात्मा बुद्ध इसमें प्रवेश करके बौद्ध धर्म की स्थापना कर देते हैं। तो इनका मुख्य गुण धर्म क्या है, अहिंसा। और अहिंसा भी कैसी, कायरता वाली, मना जैसे इनों के ऊपर इस्लामियों ने क्रिश्चियंस ने अटैक किया, इनके बीवी बाल बच्चों को उठा करके ले गए, लेकिन ये अहिंसा का पाठ ही पढ़ाते रहे। ऐसा थोड़े होता है घर के अंदर कोई चोर घुस जाए और डकैती डाले तो उस समय जो घर की मुखिया है उसका फर्ज क्या बैठता है कि उस समय अपनी रक्षा करना। तो इनके अंदर कायरता वाली अहिंसा, अहिंसा भी कैसी कायरता वाली, और साथ साथ इनके अंदर संन्यास वृत्ति भी होती है। प्यूरिटी की पावर भी होती है क्या, अहिंसा के साथ साथ इनके अंदर पवित्रता की भी पावर होती है, क्योंकि बाबा ने कई बार मुरली में बोला है कि बौद्धियों ने एक ही स्पीच में 70,000 बौद्धि बना दिए। तो अहिंसा और साथ साथ पवित्रता भी होती है। तीसरा नंबर में दिखाया गया दूसरा तीसरा चौथे नंबर का नारायण क्राइस्ट, इनका मुख्य गुण धर्म क्या है, क्रोधी। और क्रोधी के साथ साथ कैसे क्रोधी है, ठंडा क्रोधी। एक तो क्रोध शंकर जी जैसा आया और जो कहना था कह दिया और बस अंदर से शांत, ठीक है ना, मतलब है गुस्सा आया जो कुछ कहना था कह दिया अब शांत। दूसरे का संकल्प खूब चलेंगे लेकिन उस आत्मा के अंदर संकल्प नहीं चलते। लेकिन इनका क्रोध ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मुल्क ही कैसा है, ठंडा मुल्क है, अमेरिका खंड है, क्रिश्चियन खंड है, तो ये ठंडा मुल्क है, इसलिए यहाँ पर ठंडा क्रोध पनपता है, ठंडे क्रोध ही होते हैं। और ठंडे क्रोध के साथ साथ काम पेंट शो भी बहुत होता है, दिखावा करने की वृत्ति बहुत होती है, कहते ना घर में नहीं है दाने और अम्मा कभी बुलाने, दिखावा बहुत करेंगे, अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन भारतीय परंपरा तो ऐसी नहीं है, भारतीय परंपरा में दिखाते हैं ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या की भी तो जंगलों में जाकर के तपस्या करते थे, तो कोई देख ही ना पाए उनकी तपस्या को, गुप्त तपस्या करते थे, जमीन में गड्ढा खोद देते थे और उसमें बैठ जाते थे, ऊपर से घास हुई आती थी। लेकिन इनके अंदर शो करने की वृत्ति बहुत होती है, दिखावा बहुत करेंगे, तो इनका मुख्य गुण धर्म क्रिश्चियन का। पांचवे नंबर का नारायण शंकराचार्य, इनका मुख्य गुण धर्म क्या है, अधूरी पवित्रता। और अधूरी पवित्रता के साथ साथ ये अहंकारी भी बहुत होते हैं, इन सन्यासियों के अंदर अहंकार उतना ही होता है जितना नास्तिक धर्मी होता है। लेकिन फर्क क्या है कि इनके अंदर देह का अहंकार होता है नास्तिकों में, और इन सन्यासियों के अंदर पवित्रता का बहुत अहंकार होता है। ये अपने को क्या समझते हैं, अपने को तो बहुत ऊंच समझते हैं, गृहस्थियों को क्या समझेंगे, अरे ये तो घर में रहने वाले हैं, किचन में रहने वाले हैं, इनको ज्यादा ये सेंटर के अंदर लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। तो गृहस्थियों को कैसी दृष्टि से देखते हैं, माताओं को कैसे देखते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने क्या कहा, नारी नरक का द्वार है, जबकि जन्म उसी नारी से लेते हैं। भिक्षा मांगने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलते हैं, भिक्षां देवी, भिक्षा भी वहीं से लेंगे, जन्म भी वहीं से लेंगे, और फिर बोलेंगे नारी नरक का द्वार है। तो बाबा बोलते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है, उन्हीं कन्याओं माताओं को बाबा आगे उठाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, अधूरी पवित्रता। ये घर गृह के टीचे में रह करके पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं कर सकते, दूरवाज खुशवाज तो हो सकते हैं जैसे कोई सन्यासी हो और मजबूरी वश उसको दूर ही रहना पड़ जाए 8-10 साल और फिर आकर के बोले अरे हम इतने वर्ष पवित्रता का विरोध धारण किया तो तुमकी मजबूरी हो गई ना। घर गृहस्थ के कीचड़ में रह करके फिर पवित्रता का विरोध धारण करें वो है कमल। जैसे कीचड़ में कमल रहता है लेकिन फिर भी न्यारा और प्यारा, इनके अंदर वो संस्कार नहीं होते कि घर गृहस्थ में रहकर फिर पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपनी स्त्री बाल बच्चों को तो छोड़ आएंगे और पढ़ाई के ऊपर नजर रखेंगे जैसे कहते हैं गुरु माता। तो इनके अंदर जो है अधूरी पवित्रता है और इनमें पावर भी बहुत है। क्या बाबा ने कहा है कि अगर ये सन्यासी ना होते तो भारत काम अग्नि में जल मरता। भले इनके अंदर अधूरी पवित्रता थी लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, भारत जलते हुए भारत को थमाया। जब भारत में ढेरों रानियां रखते थे राजाएं, ऐसे समय पर इन्होंने ऐसा उपदेश दिया गृहस्थ अलग हो गए और आश्रम अलग हो गए। तो इन्होंने कैसी पढ़ाई, अधूरी पवित्रता। लेकिन फिर बाबा ने बोला है जब ये सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। राजाएं और सन्यासी निकलेंगे तो राजाएं तो निकलने शुरू हो गए। राजाएं कौन हुए, रुद्रमाला के मण के वो है राजाएं। और राजाओं के साथ जरूरत किसकी है, रानियों की। तो सन्यासी निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो ये सन्यासियों में पावर भी होती है पवित्रता की। तो इनका मुख्य गुण धर्म क्या हुआ, पवित्रता, और वो भी कैसी, अधूरी पवित्रता और सासा अहंकार। ये जितने जब शुरू में आते हैं त्यागी तपस्वी भी होते हैं और बाद में फिर उतने ये भोगी विलासी भी बन जाते हैं। अगला छठे नंबर का धर्म मुस्लिम धर्म। इनके अंदर क्या होता है मुख्य गुण, इनका मुख्य गुण धर्म क्या है, लोभी। कामी तो ये भी होते हैं क्योंकि ये इस्लाम धर्म का ही छेड़ा है, इस्लाम धर्म में से ही ये शाखा निकली है। हर धर्म में दो शाखाएं होती हैं, जैसे बौद्धियों में दो शाखाएं, कौन कौन सी होती हैं बौद्धियों में, हीनयान और हीनयान महायान। ऐसे मुसलमानों की दो शाखाएं होती हैं, दो, एक शिया एक सुन्नी। तो हर धर्म के दो छेड़े होते हैं। तो इस्लाम धर्म के अंदर से ही ये मुस्लिम धर्म निकलता है। इसका मुख्य गुण धर्म क्या है, ये कामी तो होता ही है लेकिन कामी के साथ साथ इनके अंदर लोभ भी बहुत होता है। लोभ इतना होता है कि इन्होंने भारत में जो सोमनाथ मंदिर था उसको खूब लूटा, 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने। तो ये लोभी भी होते हैं। अगला है सातवें नंबर का धर्म सिख धर्म। ये है देवी देवता सनातन धर्म का सहयोगी, सेकंड नंबर का प्रवृत्ति मार्ग का धर्म जो बाबा मुरली बोलते हैं। एक सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है इन सब धर्मों में, हाँ, जिसके अंदर व्यभिचार नहीं चलता। आज तक भी उनके अंदर ये धारणा रही, एको नारी सदा ब्रह्मचारी। तो प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? ये सहयोगी धर्म है। लेकिन क्या मुसलमानों से, अंग्रेजों से जो टक्कर ली इन्होंने, तो इनके अंदर वो गुण, वो संस्कार भी आ जाते हैं। अगला है आर्य समाज जी, कौन सा धर्म, कौन सा नंबर का हो गया? क्या आठवें नंबर का धर्म महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापन किया गया, कौन सा धर्म? आर्य समाजी धर्म। तो ये जो धर्म है ये है अर्धनास्तिक। क्या इसको क्या कहेंगे? अर्धनास्तिक, क्योंकि बाबा ने भी मुरली बोला है, शास्त्रों को जानने वाला आस्तिक नहीं वरन बाप को जानने वाला आस्तिक है। शास्त्रों का तो बहुत ज्ञान होता है, लेकिन हमारे शास्त्र कौन से हैं? मुरलियां। मुरलियों का तो खूब अध्ययन किया, लेकिन भगवान को ये पहचान नहीं पाते। इसलिए बाबा भी मुरली बोलते हैं कि आर्य समाज लिटरेचर बहुत छपाते हैं, तो यज्ञ के अंदर भी कोई ऐसी आत्मा होगी जो सबसे ज्यादा लिटरेचर छपाने वाली होगी, तो वो आर्य समाजी। इनका मुख्य गुण धर्म क्या है? हैं? मोही, मोही बहुत होते हैं, और मोह भी किससे? जनसंख्या की वृद्धि हो जाए, ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाए, भले वो गिरड़ जैसी संतान हो। बाबा तो बोलता है क्वालिटी वाली आत्माएं निकलनी चाहिए। क्या बारिश क्वालिटी? तुम बच्चों को क्या करना है? बारिश निकालना है। वो निकालते हैं प्रजा, और तुम बच्चों को क्या करना है? बारिश निकालना है। बारिश का मतलब एक आत्मा ऐसी निकले और उसके पीछे ढेर सारे निकल आए, तो आत्मा क्या हो गई? क्वालिटी वाली हो गई। तो तुम बच्चों को करना है बारिश क्वालिटी की सर्विस, और वो क्या करेंगे? वो क्वांटिटी इकट्ठी करेंगे, प्रजा बनाएंगे, क्योंकि मेले, मराखड़े, कॉन्फ्रेंस, इनसे क्या निकलेगी? प्रजा निकलेगी, राजाए नहीं निकलते। तो इनके अंदर क्या, इनका मुख्य गुण धर्म क्या? एक तो मोह, मोह भी किससे? प्रजा से मोह, प्रजा की प्रजा की वृद्धि हो जाए। यह धर्म निरपेक्ष है ना, किसी भी धर्म की हम अपेक्षा नहीं करते। तो इस तरह ये हो गए नौवें नंबर का है? ये तो देवता धर्म हो गया पहला, फिर क्षत्रिय धर्म, फिर इस्लाम धर्म, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, बौद्ध धर्म, फोर्थ नारायण, क्रिश्चियन क्राइस्ट, और फिफ्थ शंकराचार्य, और सिक्स्थ मोहम्मद गजनबी, और सेवन गुरु नानक, और आठवें नंबर का नारायण कौन हुआ? महर्षि। ये आठवें नंबर का नारायण हुआ, और ये जो है ये नास्तिक धर्म। ये नारायण बनने की पदवी प्राप्त नहीं करता, क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान से कामी भी प्राप्ति कर लेते हैं। देखो इस्लामियों का राज 2500 वर्ष तक चलता है, जो बाबा मदनी बोलते हैं बात सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। खाली शक्तिवान ही नहीं, क्या सर्वशक्तिवान, बराबर की टक्कर है। 2500 वर्ष तक राज्य चलता है इस्लामियों का। तो ये जो है ये नास्तिक धर्म लेनिन स्टालिन द्वारा जो स्थापन किया गया, इनके इनका मुख्य गुण धर्म क्या है? ना तो ये आत्मा को माने, न परमात्मा को माने, क्या न आत्मा को मानते हैं, न परमात्मा को मानते हैं, तो मानते किसको है? ये देह को सब कुछ मानते हैं। तो देह देह को याद करते करते इनके अंदर देह का अहंकार बढ़ गया, और देह अहंकार में आकर के इन्होंने दुनिया का विनाश करने का सामान तैयार करके रख लिया, बड़े बड़े एटम बम तैयार करके रख लिए। तो ये अहंकारी होते हैं, तो इसलिए कहा कि भगवान से कामी भी प्राप्ति कर लेता है, क्रोधी भी भगवान से प्राप्ति कर लेता है, लेकिन जो अहंकारी होते हैं उनको प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र में अहंकार की निशानी क्या दिखाई है? कहते हैं कृष्ण के पास जब युद्ध छिड़ा, छिड़ने से पहले कृष्ण के पास अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया, दोनों ही गए। तो दोनों ने क्या, दोनों में जो था कृष्ण जो वो अर्जुन जो था वो तो पांव के पास बैठ गया जा करके निरहंकारी होकर के। इसलिए कहते हैं सर के ऊपर बैठ के शिक्षा धारण नहीं करनी चाहिए, क्या था। अब दुर्योधन जो था वरदान भी लेने गया, जिससे वरदान लेने गया उसके सर के ऊपर खड़ा हो गया है? पहले गया तो पांव के पास भी तो खड़ा हो सकता था, तो अहंकार था ना। तो दुर्योधन ने क्या मांगा, मुझको शस्त्र दे दो और है? और सेना दे दो। अर्जुन ने क्या मांगा है? बस मुझे तो भगवान बस आप ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो निरहंकारी था ना, तो इसलिए बताया कि जो अहंकारी होते हैं उनको कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो ये जो धर्म है नास्तिक धर्म, ये अहंकारी धर्म है, लेनिन स्टालिन के द्वारा स्थापन किया गया धर्म। लेनिन स्टालिन ने क्या किया, जितने भी चार राजाएं थे सबको कत्लेआम करवा दिया, कोई राजा ही नहीं, प्रजा के ऊपर प्रजा का अधिकार। तो इस तरह जो है ये अहंकारी है। तो परमात्मा से सबसे बड़ी दात तो हमको क्या मिलती है, राजाई। राजा ही वर्षा देता है ना, राजा बेटा बनाता है ना परमात्मा आकर के, क्या बनाता है, तो राजा बेटा बनाता है। जन्म मंत्र क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। तो उस राजाई को ये ठुकरा देते हैं, राजाई को मानते नहीं है। इसलिए ये जो धर्म है नास्तिक धर्म को कोई प्राप्ति नहीं होती। सती में जाकर के आठवें नंबर का लाया तो आर्य समाज जाकर के बनेगा, इसको नारायण बनने की भी पदवी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जो स्थापना करते हैं उनको प्राप्ति होती कुछ ना कुछ। तो अब आर्य समाजी है तो ये अर्धनास्तिक, ये निराकार को तो मानते हैं, लेकिन निराकार की जो रचना है माना साकार देवता उसको नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते। तो निराकार को तो माना, इसलिए अर्धनास्तिक हो गया, आधा नास्तिक हो गया। तो इसको आठवें नंबर का नारायण बनने की पदवी प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये जो नास्तिक धर्म है इसको कोई पदवी प्राप्त नहीं होती, नारायण बनने की भी पदवी इसको प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन करते हैं, सहयोगी नहीं बनते, विनाश के निमित्त बनते हैं, तो विनाशकारियों को कोई प्राप्ति नहीं होती। तो इनका गुणधर्म क्या बताया, अहंकारी, और साथ में इनकी क्या होता है, अपवित्रता बहुत होती है। ये जितने भी धर्म है ये सब है अपवित्र धर्म है, इन धर्मों में पवित्रता को मान्यता नहीं देते, पवित्रता की वैल्यू को भी नहीं जानते कि पवित्रता क्या चीज होती है। और ये जितने भारतवासी धर्म है ये भले आर्य समाजी क्यों ना हो लेकिन फिर भी पवित्रता के प्रति इनके अंदर आस्था है, मानते जरूर हैं, पवित्रता को वैल्यू देते हैं। और ये बिल्कुल उल्टे, इम्प्योरिटी इनकी रग रग में भरी हुई है। तो परमात्मा जो है वो कौन से देश में आता है? भारत देश में आता है, ये नहीं कहा अरब देश में आता है या अमेरिका खंड में आता है, भारत खंड में ही आता है। भारतवासी ऊंच से ऊंच बनते हैं और वही नीच से नीच बनते हैं। तो इनके अंदर भी विधर्मी और स्वधर्मी, उनके लिए बाबा ने मुरली में भी बोला है, विधर्मी की पहचान कैसे हो? कोई कहे कैसे कह दिया तुमने यह हम विधर्मी हैं? तो बाबा ने निशानी बताई। बाबा ने मुरली में बोला है कि बाबा कोई बोर्ड पर लिख करके नहीं देंगे कि तुम्हारा ये पार्ट है। को पूछे बाबा हमारा क्या पार्ट है, तुम तो अंतर्यामी हो, बता दो हमारा पार्ट क्या है। तो बाबा ने क्या बोला, बाबा बोर्ड पर लिख करके नहीं देंगे, अपनी चलन से ही दूसरी आत्माएं भी महसूस करेंगी कि हाँ इसकी चलन ऐसी है, ये इस धर्म की आत्मा है। तो विधर्मियों की पहचान बताइए, क्या है विधर्मियों की पहचान? तो विधर्मियों की पहचान बाबा ने बताई, जो पहले पहले सतयुग में आए होंगे उन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे, और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेंगे। समझने की बातें हैं, जो पूरे 84 जन्म देने वाली आत्मा होगी वही आएगी, सतयुग में भी आएगी, और जो पूरे 84 जन्म देने वाली आत्मा नहीं है वो क्या होगा, मानेगी नहीं पूरी बात को, आधी बात को मानेगी और आधी बात को नहीं मानेगी। तो 84 जन्म ना लेने वाले कोई भी बात को ठीक रीति समझ ना सकेंगे। क्या पहचान बताई, ठीक तरह नहीं समझेंगे, क्योंकि बाबा ने जो मुरली में ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी सुनाया वो तो हमारी श्रीमत हो गई ना। तो श्रीमत का मतलब श्रेष्ठ मत हो गई। तो जो भी मुख से सुनाया, तो बाबा ने बोला मुखवंशावली है, तो जो बाबा मुख से कहे मानना पड़े। तो जो नहीं मानने वाले हैं तो कौन हो गए, विधर्मी। तो विधर्मियों की पहचान पहली क्या बताई, कभी भी एडवांस कोर्स देते हैं आप अगर, तो वो आत्मा हर बात को मानती है कि हाँ बाबा ने ऐसा कहा है तो ये बात ठीक है, तो समझ लो वो अपने कुल की है। और अगर वो विरोध करती है, हम नहीं मानते, तो समझ लो कौन से धर्म की है वो, जरूर विधर्मी है। तो विधर्मियों की पहचान क्या बताई, वो हाँ वो तो है ही, वो तो उनकी जब वो बात को ही नहीं मानेगा तो मदर का तो मानने की बात ही नहीं, उनका मदर से कनेक्शन ही नहीं होगा। तो 84 जन्म ना लेने वाले कोई भी बात को, क्या खाली मदर की बात को नहीं, कोई भी बात को वो ठीक रीति समझ नहीं सकेंगे। फिर अगली बात बताई बाबा ने मुरली में कि 84 जन्म ना लेने वाले को माया हिलाएगी। कब? अंत में हिलाएगी। अभी लेने वाले हैं तो आए समा समय ना हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो रही है, तो उसका कारण क्या, जो 84 जन ना लेने वाले हो तो माया हिलावेगी। ये गिरावट आगे चल करके देखेंगे, अभी नहीं, अभी तो जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनको माया खूब हिला हिला करके देख रही है। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या बोला, माया को, माया मेरी बेटी है। तो बेटी किसकी होगी, बेटी तो बाप की होगी, अगर माता पिता की होती तो बेटी माया बेटी क्यों कहलाती, ये तो बच्ची कहलाती, कहते ना ये तो मायावनी है, है? बच्ची होगी तो माता पिता की होगी ना, माया ही नाम क्यों पड़ेगा, वो तो बच्ची ही नाम पड़ेगा। हाँ, तो ये गिरावट आगे चल करके देखेंगे, जिनके कम जन्म होंगे 84 जन्म न लेने वाली आत्माएं उनकी अवस्था आगे चल करके डाउन होगी, गिरेंगे, और जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनको अभी माया हिला रही तो घबराना नहीं, क्या ये क्या हो रहा है। जब ऊंची चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो फिर विजन भी
दिगन भी फिर ऐसे ही आते हैं, छोटे आदमी के लिए छोटी परीक्षा, बड़े आदमी के लिए बड़ी परीक्षा। बड़े बड़े महारथी होते हैं तो उनके लिए माया कैसे बन करके आती है, बड़ा रूप धारण करके आती है। तो राजा बनने वाले हैं जन जन्मांतर के, तो फिर उनके आगे माया कैसे आनी चाहिए, रॉयल रूप में ही आनी चाहिए है? ऐसे थोड़े राजा बन जाएंगे है? राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, टक्कर तो लेनी ही पड़ेगी। राजाओं ने क्या किया, टक्कर ली। बिना लड़ाई के तो राजा मिलने वाली नहीं, पहले पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर लड़ाई। कोई कहे हम लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं, हमारी कोई फूल लड़ाई तो नहीं है, हमारी लड़ाई है सत्य और असत्य की लड़ाई, धर्म युद्ध है ये तो, धारणाओं का युद्ध है। तो बिना लड़ाई के राजाई मिल ही नहीं सकती। हिस्ट्री में भी दिखाया कि राजाओं ने क्या किया, लड़ाई की, जिस राजा ने ज्यादा लड़ाई की उसको उसने जीत पहनी, सारी लड़ाई से थोड़ी लड़ाई भी लड़े और साथ में जीत भी प्राप्त कर ले, तो उतना ही बड़ा क्या बन गया, राजा बन गया। तो यहाँ पर भी वही बात है, पहले पढ़ाई, पढ़ाई के बाद लड़ाई, और लड़ाई के बाद
लड़ाई,
क्योंकि बिना लड़ाई किए सड़क के गेट में घुसने को नहीं मिलेगा, बिना लड़ाई किए सड़क के गेट में धर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा ने मुरली बोला यूपी को धर्म युद्ध का खेल खेलना है। तो विधर्मियों की पहचान समझ में आई कि विधर्मियों की पहचान क्या होगी, तो ये तो होगी विधर्मी आत्माओं की निशानी। तो इन विधर्मियों में भी जो पहला नंबर का जो विधर्मी है, जो लेफ्ट साइड के धर्म है, उनमें पहला धर्म इस्लाम धर्म, पहला पहला धर्म विधर्मी, तो ये जड़ों पर जो बैठे वो ब्रह्मावस्थ हैं। इनमें जो पहले नंबर की जो जड़ है लेफ्ट साइड की, यहाँ पर बैठा हुआ जो ब्रह्मावस्थ है वो हमारे यज्ञ के अंदर तो बैठा होगा ना, इसलिए बाबा ने बोला है विधर्मियों के लिए शक्ति स्वरूप बनना है। विधर्मी भी आकर के ब्राह्मण बनेंगे, तो वो विधर्मी आत्मा अभी क्या बनी होगी, ब्राह्मण बनी होगी। तो ये जो विधर्मी आत्मा जन्म लेते लेते जब यहाँ पर पहुंचेगी, तो ऊपर से आने वाली सोल माना इब्राहिम की सोल उसमें प्रवेश करेगी और इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो वो आत्मा कहाँ पर होगी, यज्ञ के अंदर होगी। ये है सेकंड नंबर का नारायण, मम्मा बाबा के बाद जो सेकंड नंबर गद्दी है सती की, वो किसके हाथ में आएगी, सेकंड नारायण के। और सेकंड नारायण जो होगा वो क्या होगा, कौन से धर्म का होगा, इस्लाम धर्म का होगा। तो उसकी शूटिंग कहाँ पर होनी चाहिए, यहीं पर होनी चाहिए कि मम्मा बाबा के बाद यज्ञ का कारोबार किसने संभाला। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ की कंट्रोलर कौन बनी है, जोर से बोला तो समझ में आया ना,
कुमार है।
हाँ, बाबा ने नाम दिया कुमारी का, तो यज्ञ की कंट्रोलर बनी मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद। अब वो महसूस भी करती हैं, हाँ, कि मम्मा बाबा के हम वारिस बनेंगे जा करके, क्या बनेंगे। तो उनको ये नहीं पता कि उनके जो बच्चे बनेंगे सत्य के, जो फर्स्ट नारायण राधा कृष्ण ही जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना, सत्य का फर्स्ट नारायण माना मम्मा बाबा ही जाकर के सत्य में फर्स्ट नारायण बनेंगे। पहला पत्ता कृष्ण, सत्य का पहला पत्ता कृष्ण है, तो पहली गद्दी शुरू होगी ना। तो उनके जो बच्चे बनेंगे वो तो सेकंड नारायण है, सेकंड नारायण कौन से धर्म की आत्मा है, इस्लाम धर्म की। उसकी शूटिंग कहाँ पर होगी, संगम युग पर होगी, तो वो आत्मा इस्लाम धर्म से कनेक्टेड जरूर होगी। तो जिन्होंने यहाँ पर मम्मा बाबा की गद्दी संभाली, तो वहाँ पर भी सत्य में भी वो गद्दी संभालेंगे। तो मम्मा की गद्दी किसने संभाली, कुमार का दादी ने, और बाबा जो है सबसे ज्यादा अपने जीवन में जो विश्वास करते थे वो विश्व किशोर भाव के ऊपर विश्वास करते थे। बाबा का भतीजा था, विश्व किशोर भाव बोलते थे बाबा। तो बाबा ने सबसे ज्यादा अपने जीवन में विश्वास किया। हाँ, जब यज्ञ के आदि में 300-400 कन्याओं माताओं को रखा तो जो बाहर से रसद लाई जाती थी सिंध हैदराबाद में जब थे तो बाहर से जब सिंध हैदराबाद में तो बाबा ने बोला है कि यहाँ जितना भोग लेंगे उतना सतयुग में हमारा कम हो जाएगा। मुरली में तो बाबा बोलते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, तुम बच्चों को भी क्या बनना है, सेवादारी बनना है। जितना यहाँ सेवादारी बनेंगे उतना ही वहाँ पर राज करेंगे। तो इस तरह जो है ये पहली जड़ पर जो बैठा हुआ दिखाया गया ब्रह्मा वक्त, जन्म लेते लेते जब यहाँ पर पहुँचेगा तो ऊपर से इब्राहिम परम धाम से डायरेक्ट परम धाम से जो आत्मा उतरेगी, बीज जो कट्टर हैं अपने धर्म के पक्के हैं, जिसके लिए बाबा ने बोला ये लास्ट में आएंगे यज्ञ के अंदर, लास्ट में आएंगे, लास्ट में ब्राह्मण बनेंगे, ब्रह्मा कुमार बनेंगे, वो भी थोड़े टाइम के लिए इस्लामी भरने के लिए आएंगे। उसके ऊपर तो ऊपर से डायरेक्ट जो बीज है परम धाम से उतरेगा और वो ये जो दिखाया जड़ पर बैठा हुआ ब्रह्मा मत जन्म लेते लेते जब द्वापर में पहुंचेगा तो इसके अंदर वो सोल प्रवेश करेगी तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, इब्राहिम। इसलिए बाबा ने भी मुरली बोला है जब ऊपर से आत्मा प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, नाम भी बदल जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का पहले नाम क्या था, दादा लेखराज, और बाद में उनका नाम क्या पड़ गया, ब्रह्मा। तो इसी तरह ऊपर से जो आने वाली सोल होगी वो जब प्रवेश करेगी तो उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, जैसे महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध का पहले नाम क्या था, सिद्धार्थ, अब बाद में उनका नाम क्या पड़ गया, बुद्ध पड़ गया। इस तरह जो है उस आत्मा का भी नाम बदल जाता है। अब वो जो ऊपर से आने वाली सोल है इसमें प्रवेश करके वो अपना इस्लाम धर्म स्थापन कर लेगी। तो इस्लाम धर्म की आत्मा का गुण धर्म क्या बताया था आपको, वे विचार कामी और सांसद वे विचारे, तो ये तो स्थूल कर्म इंद्रियों से वे विचार करेंगे द्वापर में, द्वापर के शुरू में। लेकिन वो आत्मा जो यज्ञ के अंदर है, जिसके लिए बाबा ने बोला यज्ञ के अंदर भी प्योर ब्राह्मण चाहिए, विधर्मियों के लिए शक्ति स्वरूप बनना है, इसका मतलब विधर्मी आत्माएं भी आकर के ब्राह्मण बनेंगी। तो ये जो है इस्लाम धर्म की आत्मा, इसका जो आधार मूर्त आत्मा होगी वो जरूर यज्ञ के अंदर ही होगी, ब्राह्मण होगी। तो ये तो व्यभिचार फैलेगा वहाँ पर द्वापर में, लेकिन यज्ञ के अंदर तो ऐसी कोई बात है नहीं, यहाँ तो पवित्रता ही सिखाई जाती है ना, तो वो आत्मा यज्ञ के अंदर कैसे व्यभिचार फैलाएगी। हाँ, दृष्टि वृष्टि से यहाँ पर सूक्ष्म और वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थूल में हो जाएगा। यहाँ संकल्पों की शूटिंग होगी और वहाँ पर फिर स्कूल में शूटिंग होगी। यहाँ लड़ाई लड़ेंगे संकल्पों से, मुख से, और फिर द्वापर में क्या करेंगे, तो बंदूक से लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ शूटिंग जो शूटिंग में टाइम शूटिंग जो दृष्टि से होती है, दृष्टि से वो विचार वो फैलाती है वो आत्मा, इस्लाम धर्म की आत्मा। इसलिए बाबा ने भी मुरली बोला है कि रावण जब से आते हैं तब से फ्रैक्शन पैदा कर देते हैं।
तो रावण कौन हुआ? कामी कोई काम विकार ही मुख्य है। तो पहला सिर कौन हुआ? कामी इस्लामी। तो वो आत्मा यज्ञ के अंदर जब आती है मम्मा बाबा के बाद, वो यज्ञ के अंदर कंट्रोलर बन जाएगी। तो यथा राजा रानी तथा प्रभा प्रजा। तो ब्रह्मा जो बाबा मुरली बोलते हैं कि देवताएं भी भ्रम मार्ग में गए, माना उल्टे रास्ते गए। तो उल्टा रास्ता पहला कौन सा हुआ? इस्लाम धर्म का। माना देवता वर्ण की आत्मा है, देवताओं में पहला देवता ब्रह्मा। तो वो आत्मा भी प्रभावित हो जाती है किनसे? इस्लाम धर्म की आत्मा। अगर प्रभावित ना होती तो अगर वो आत्मा जो है, इन्होंने प्रभाव तो डाल दिया ना, ब्रह्मा के दिल को जीत लिया, ब्रह्मा बाबा के दिल को जीत लिया, तब तो गद्दी संभाल लिया, सारा कंट्रोल ले लिया। जबकि बाबा ने तो दी भी नहीं गद्दी उसको। बाबा ने मुरली में बोला, बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो पहली अभ्यक्तवाणी में ही बाबा ने बोला 69 की, ये कुमारिका जो है वो मददगार रहेगी और मनमोहनी दीदी यज्ञ की, हाँ यज्ञ की जो है वो सहयोग, यज्ञ की देखरेख करेगी और ये सहयोगी रहेगी, असिस्टेंट क्लर्क। लेकिन क्या होता है कलयुग में, लाल सीताशाही के जमाने में असिस्टेंट क्लर्क बन जाते हैं, और क्लर्क जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं? है? वो हेड बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो ये बात जो है, दिल्ली में एक भाई था, कुमार था, उसने जाकर के पूछा जब मनमोहनी दीदी थी कि दीदी वाणी में तो बाबा ने बोला है कि मनमोहनी दीदी जो वो यज्ञ की कंट्रोलर रहेगी और कुमार का जो है वो सहयोगी रहेगी असिस्टेंट के रूप में, तो बाबा ने तो निमित्त नहीं बनाया। तो मनमोहनी दीदी ने बोला, अरे बच्चे मैं अनपढ़ हूँ ना, और शादी तो कुमार का तो पढ़ी लिखी है, होशियार है, मतलब अंदर से वो महसूस तो उनको भी हो रहा था, लेकिन गद्दी खींचने की संस्कार किसके अंदर होती है? इस्लामियों ने राजाई छीना जब्ती की, जितनी इस्लामियों ने राजाई छीना जब्ती की उतनी राजाई के लिए तो बेटा जो बाप को भी खत्म कर देता था। तो इस तरह जो वो दृष्टि वृत्ति का कचरा यज्ञ के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। दृष्टि वृत्ति का कचरा कैसे शुरुआत होती है? दृष्टि वृत्ति की, जो बाबा ने मुरली में बोला, मुरली में बाबा ने बोला है 9:10-73 की वाणी में, माया कोई मुख से मत नहीं लेती है, एक्ट ऐसी करते हैं, कहते हैं इशारों में ही बात हो जाती है, देखो ऐसे इशारे होते हैं, इशारे से ही बात कर लेते हैं। तो माया भी क्या करती है? एक्ट ऐसी करती है। कैसी एक्ट? दृष्टि वृत्ति का कचरा फैलाने की। क्योंकि बाबा ने तो ये नहीं कहा कि छोटी छोटी कन्याएं माताएं बैठ करके, भाइयों को बैठ करके दृष्टि दें, ये मुरली बोला है कि ये संपूर्ण शिवलाई होगी, वो किनकी होगी? वो आज की होगी। तो मम्मा बाबा उनको पूछते थे कि भाई आप क्यों ऐसा करते हो, मम्मा बाबा भी तो दृष्टि देते थे, तो उनको ये नहीं पता कि मम्मा बाबा जो थे वो कौन सी सोल्स थी, कहाँ इतनी प्यूरिटी की पावर मम्मा में, मम्मा में जितनी प्यूरिटी की पावर थी तो उसकी जो सीड इसने ली क्या उसके अंदर उतनी ही प्योरिटी से पावर हो सकती है? फिर कमी तो होगी, और फिर वो तो इस्लाम धर्म में तो पवित्रता को मानते ही नहीं है, तो कहाँ से पवित्रता आएगी उनके अंदर? तो इसलिए बाबा ने बोला कि माया एक्ट ऐसी करती है, बाप मुख से बैठ समझाते हैं, ये सब क्या है? श्रीमत के बरखिलाफ है। क्या श्रीमत के बरखिलाफ है? हाँ, तो पावर होनी चाहिए इतनी। तो वो व्यभिचार की शुरुआत किसने कर दी? यदि के अंदर इस्लाम धर्म की आत्मा ने व्यभिचार शुरू कर दिया। इसलिए बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाली आंखें, इन आंखों को क्या करना है? कंट्रोल करना है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं सूरदास ने आंखें ही निकाल दी। तो आंखें निकालने की बात नहीं है, देखते हो इस दुनिया को न देखें। तो मतलब कहने का है वो शुरुआत व्यभिचार की इस्लाम धर्म की आत्मा से ही पड़ जाती। इसलिए बाबा ने भी कई बार मुरली बोला है कि वास्तविक रावण कौन, किसको कहेंगे रावण? क्या ऊपर से जो परम धाम से आत्मा आती है उसको रावण कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो पवित्र आत्मा आती है। जब परम धाम से डायरेक्ट आत्मा आई इब्राहिम की, कोई भी आत्मा ऊपर से उतरती है आती है तो पहले तो प्रवेश करेगी ना, तो वो तो पवित्र आत्मा आती है, तो उसको तो रावण नहीं कह सकते। तो फिर किसको रावण कहेंगे? आधारभूत को इसको कहेंगे, या इनको भी जन्म देने वाले जो बीज रूप आत्माएं हैं उनको बोलेंगे? बीज जो है रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली आत्माएं, तो वास्तव में रावण किसको कहेंगे? क्योंकि ऊपर से आने वाली आत्मा जब प्रवेश करेगी इब्राहिम में, तो ये तो उस धर्म की क्या हो गई? माता हो गई। उसको तो जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगी। जैसे किसी में कोई भूत प्रवेश कर जाता है, तो जिसके अंदर प्रवेश करता है उसकी अपनी आत्मा दब जाती है, वो जैसे चलाता है वो शरीर वैसे ही चलता है। तो ये तो हो गया आधार मूर्त आत्मा, कम जन्म लेने वाली आत्मा। तो ऊपर से आने वाली सोल जब इसमें प्रवेश करेगी तो अपना धर्म स्थापन कर लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविक रावण कौन हुआ? बीज और आधार, आधार मूर्त आत्मा और बीज रूप आत्मा, माना उस आधार को जन्म देने वाला पाप बीज और वो इब्राहिम बच्चा। तो वास्तव में रावण कौन हुआ? यही रावण हुआ। इसलिए भगवान का बीज का सुधार माना सारे विश्व का सुधार। जैसे ये तो आधार मूर्त आत्माएं हैं, इनको तो मालूम ही नहीं है, परमात्मा की पहचान ही नहीं है, ये तो गलती करते हैं, तो इनको इतनी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन ये बीज है, माना इनको द्वापर में जन्म देंगे, तो जन्म देने वाले हैं बीज रूप आत्माएं, उनको तो पहचान हो गई परमात्मा की, और पहचान होकर के फिर वो पाप करते हैं, तो उनको दंड कितना मिलेगा? हजार गुना, लाख गुना। क्यों? क्योंकि जान बूझ करके पूरी नॉलेज होते हुए भी फिर ये गलती करते हैं, और उनको तो नॉलेज ही नहीं होना आधार में साथ ना होगा तो गलती करते हैं। तो इसलिए रावण किसे कहेंगे? आधार और बीज, माना वो तो हो गई उन्होंने धर्मों की माताएं, इब्राहिम या क्राइस्ट या मोहम्मद गजनबी, ये क्या हो गए? ये उन्होंने धर्मों की माताएं हो गई। भले शरीर पुरुष के हैं लेकिन वो क्या हो गए? माताएं हो गई। इसलिए रावण के सिर में जो रावण का चित्र बनाते हैं ना, तो रावण के जो सिर दिखाते हैं उसे उन 10 सिरों को भक्ति मार्ग में पुरुष रूप ही देते हैं। भक्ति मार्ग का जो रावण है उसमें स्त्री मुख नहीं दिखाते हैं। ये स्त्री मुख कहाँ दिखाते हैं? हमारे ज्ञान में दिखाते हैं।
कहने का भाव
कि ये तो उन धर्मों के हैं, तो ये पुरुष इब्राहिम है तो पुरुष ही, लेकिन ऊपर से आने वाली सोल जो इसमें प्रवेश कर जाती है तो ये क्या होगी, तो आधार हो गई ना उस धर्म को, तो स्थापन करना है इसके द्वारा करवाना है उसने, तो ये उस धर्म की क्या हो गई, एक तरह से माता हो गई, और इसको जन्म देने वाला बाप हो गया। तो पांच स्त्री मुख मन आधार मुख कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुस्लिम, मोही महर्षि और अहंकारी रशियन, ये पांच मुख स्त्री मुख मन आधार मुख, और पांच इनको जन्म देने वाली बीज रूप आत्मा। वास्तव में ये क्या हो गए, रावण हो गए। हाँ, तो इस तरह जो है ये जो बताया रावण राज्य कब से शुरू होता है, जब से इस्लाम धर्म की आत्मा आते, तो इस्लाम धर्म में व्यभिचार चलता है, इसलिए इनकी जो जनरेशन है वो थोड़े समय में ही वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। इस्लामियों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपस में ही भाई बहन की भी शादी हो जाती है, तेरे ममेरे एक माँ के जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, बस उसको छोड़ के बाकी हाँ शादी कर लेते हैं, तो ये अंदर ही अंदर व्यभिचार चलता है, इसलिए इनकी जनसंख्या भी बढ़ जाती है। तो इनके धर्म का नाम भी उसके आधार पर ही पड़ता है, धर्म शास्त्र, जैसे भारत का देवी देवता सनातन धर्म का मुख्य धर्म शास्त्र का नाम क्या पड़ता है, गीता। गीता बाबा का गीता है माई बाप, कोई स्कूल गीता की बात नहीं है, जब कोई गीता माता का पाठ बजाने वाली आत्मा हुई, उसके लिए बाबा ने कहा सर्व शास्त्र में श्रोमणी गीता, गीता है माई बाप, माना गीता माता और गीता पति, ये क्या हो गए, सब धर्मों के माई बाप हो गए, बाकी ये सब क्या हो गए, ये बाल बच्चे हो गए। तो काम के आधार पर ही नाम पड़ता है, जैसा काम किया वैसा ही नाम किया, जैसे नाम पड़ा फरुखाबाद, नाम पड़ा ना, तो नाम फरुखाबाद ही क्यों पड़ा, ये फर से सारी दुनिया को खा जाता है, बम्बई एटम बम फूटे तो नाम पड़ गया हर हर बम बम, क्या ऐसे कलकत्ता, कलकत्ता का पहले नाम था कली काटा, माना कली को काटने वाला, कला कले कट्टा, तो नाम जो है वो काम के आधार पर बने ना, तो ऐसे ही जो भी नाम होता है वो काम के आधार पर ही बना, ऐसे ऐसे काम किए तो नाम पर। तो गीता का नाम गीता के लिए तो बोल दिया भगवान ने सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता, सबसे श्रेष्ठ बता दिया, माना ये जितने धर्म है ये जितने शास्त्र लेफ्ट साइड के हैं ये सब कैसे हैं, शिरोमणि नहीं है। हाँ, तो इस धर्म का जो शास्त्र है उसका नाम भी क्या पड़ता है, पुराण। पुराण नाम क्यों पड़ता है, जरूर पुराण होगी तो कैसी होगी है, तू बना गंदी पुराण बना पुराण, अब एक पति मर जाए तो कही जाओ वीरान हो गई, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, तो उस धर्म में उनका धर्म है, उनकी धारणा है कि ढेरों शादियां करना, अनेकों शादियां करना, तो व्यभिचारी कहां व्यभिचारिणी और कहां सती, तो कहां उसकी पवित्रता और कहां, तो व्यभिचार में तो सुख होता ही नहीं है। तो इस तरह जो उनके धर्म का जो नाम पड़ता है वो भी काम के आधार पर ही पड़ता है। तो इस तरह जो है वो इस्लाम धर्म की आत्मा हमारे यज्ञ के अंदर ही कार्य करती है, उसकी निशानी बताई। बाबा ने मुरली बोला, कोई वैश्य है धन अच्छे घर में जन्म ले ले, क्या कोई वैश्य है भल अच्छे घर में जन्म ले ले, फिर भी संस्कार अनुसार वह वैश्य तरफ ही चली जाएगी। बड़ों बड़ों की गुप्त रहती है, ज्ञान में आने से भी संस्कार बदलते नहीं तो समझते हैं शायद क्या होगी, वैश्य होगी। इतना श्रेष्ठ ज्ञान और फिर भी अगर संस्कार नहीं बदलते तो क्या कहेंगे उसको, जरूर जन्म भी उसका करप्शन होगा। तो भल अच्छे घर में जन्म ले, सबसे अच्छा घर कौन सा हो, अच्छा घर में जन्म का मतलब ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ और कोई जन्म बताते हैं क्या, तो ब्राह्मण जन्म में भी आ गई, ब्राह्मण जन्म ले लिया, ब्राह्मण घराने में जन्म ले लिया, लेकिन फिर भी संस्कार नहीं बदले तो उसे क्या कहेंगे, जरूर पूर्व जन्म में उसका जो हिसाब किताब है वो इस्लाम धर्म से कनेक्शन रहा होगा, तब तो संस्कार नहीं बदलते हैं, ऊंच घर में जन्म लेकर के संस्कार फिर भी वही आ रहा है। तो बाबा ने इशारा दिया, जिनका बहुत मान है वह तो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो, क्या जिनका बहुत मान है वो क्या समझो, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। फिर बोला कि इन सभी सितारों में सबसे ज्यादा खातरी होती है किसकी, कुमारिका की। इधर बोलते हैं कि जिनका बहुत मान है वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो, फिर बाबा ने क्या बोला, तो बाबा भी कैसी चप्पल मारते हैं, मखमली जूती, क्या मखमल की चप्पल लगे तो लगेगा, चप्पल लगी है तो बाबा इशारे में बोलते थे कि जो देवताई घराने की आत्माएं होंगी वो इशारे में, इसलिए बाबा ने कहा देवताई आत्माएं इशारे से समझती हैं, मनुष्य कहने पर समझते हैं। और बाबा बोलता रहे और फिर भी उनकी समझ में ना आए तो उन्हें क्या कहेंगे, तो इस तरह जो है बाबा ने कई ऐसे इशारे दिए, उससे साबित होता है नाम धर्म की आत्मा जो है वो जरूर युद्ध के अंदर ही होगी, और वो भी कब, मम्मा बाबा के सही सुनने का जिसने उसका गद्दी संभाली, वो जरूर सेकंड नंबर का नारायण है, जो सेकंड नंबर का नारायण है वो है इस्लाम धर्म का। तो पुरुषों में सबसे ज्यादा बाबा ने क्या किया, विश्वास किसके ऊपर किया, विश्व किशोर के ऊपर विश्वास करते थे सबसे ज्यादा, और विश्व किशोर भाव ईमानदार भी था, विश्वसनीय था, लेकिन ज्ञान में होशियार नहीं था। तो ज्ञान में होशियार नहीं होने का कारण क्या होता है, बुद्धि कमजोर क्यों होती है, बुद्धि किनकी कमजोर हो जाती है, जिनकी बुद्धि जिनके अंदर पवित्रता की पावर कम होती है तो उनकी बुद्धि भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो बताया विकारियों की बुद्धि नहीं चलती है, जो होशियार होते हैं तोते कंठी वाले क्या करते हैं, वो तो ज्ञान की कंठी उनके गले में लगी रहती है, सुनते हैं और जा करके सुनाने ले जाते हैं, और जो अमरनाथ के कबूतर होते हैं वो क्या करते हैं, अमरनाथ के मंदिर में ही बैठे रहेंगे। अमरनाथ का मंदिर कौन हुआ, कौन सा स्थान हुआ अमरनाथ का मंदिर, ममता जी क्या क्या हुआ, अमरनाथ का मंदिर हुआ ना। तो अमरनाथ में कौन रहते हैं, कबूतर। कबूतर क्या करते हैं, रहते भी वहीं पर हैं और वहीं पर ही तो गुटर गुंग करते रहते हैं, उनके मुख में से ज्ञान नहीं निकलता। तो तोते जो होते हैं वो उनके कंठी लगी होती है, होशियार होते हैं। तो जिनके मुंह में से ज्ञान नहीं निकलता तो जरूर क्या हुए, कबूतर। तो इसलिए बाबा मुख में बोलते हैं, जो होशियार बच्चे होते हैं उनको बाबा मधुबन में नहीं रखते, उनको फील्ड में भेज देते थे, सर्विस में भेज देते थे। अरे कौन जाते थे, अमरनाथ के कबूतर। तो कहने का मतलब, वो आत्मा जो है जिसकी बुद्धि में ज्ञान तो ठहरता नहीं था, तो उसके लिए बाबा ने मुरली में भी बोला है। बाबा ने बोला कि जो अच्छा पहले नंबर वाला शंकराचार्य होगा वह थोड़े भक्ति करता होगा, है ना, जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो उन देहधारियों की भक्ति करने वाली नहीं होगी, वो नहीं भक्ति करेगी, उनको बैठ कर टाइटल नहीं रहेगी चाय प्रशासिका और मुख्य प्रशासिका का, वो टाइटल नहीं देने वाली है। तो वो किसी की भक्ति, किसी देहधारी की भक्ति नहीं करती वो आत्मा। यह तो पिछाड़ी का है तो भक्ति भी कर रहे हैं, पिछाड़ी का वाला लास्ट नंबर का, पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था फिर उनको गद्दी मिली है, उनका शिष्य लायक ना होगा, मना बाबा का जो अंदर से इच्छा थी वो तो विश्वकिशोर भाव को ही देने की इच्छा थी कि गद्दी विश्वकिशोर भाव को ही मिले, उनका शिष्य लायक ना होगा। ज्ञान में होशियार नहीं थे विश्वकिशोर भाव, तो ईमानदारी थी, वफादारी थी, लेकिन ज्ञान के आधार से वो कमजोर था, ज्ञान में होशियार नहीं था। तो उनका शिष्य लायक ना होगा, ज्ञान में लायक नहीं था। कि ज्ञान तो जितनी जितनी पवित्रता होगी तो पवित्रता के आधार से उस आत्मा के अंदर ज्ञान ठहरेगा। इसलिए बाबा भी कई बार बोलने बोलते हैं, बर्तन कैसा होना चाहिए, सोने का, सोने का बर्तन होगा तो शेरनी का दूध टिकेगा, और सोने का बर्तन नहीं होगा, मिट्टी का होगा, बेईमानी की मिट्टी का होगा बर्तन, तो वो ज्ञान सारा क्या होगा, वो बुद्धि रूपी बर्तन में से निकल जाएगा। तो उनका शिष्य लायक ना था, बाबा का नहीं जो शिष्य था विश्वकिशोर वो लायक नहीं था। तो इससे क्या साबित होता है, उसका कनेक्शन क्या हो गया, जरूर इस्लाम धर्म की आत्मा से हुआ। इसलिए बाबा ने कहा विनायक ज्वाला प्रज्वलित हुई। विनायक ज्वाला क्यों प्रज्वलित हुई, क्या कारण हुआ, अगर यज्ञ के आदि में हंगामा हुआ तो कोई तो कारण होगा। तो कारण क्या है कि बाबा ने मुरली में बोला है, यह है गौपाल, बैलपाल नहीं कहा जाता, कृष्ण के साथ गौ को दिखाते हैं, बैल को नहीं दिखाते, क्योंकि कन्याओं माताओं की ही सृष्टि की जाती है। दुनिया का सबसे ज्यादा संग का रंग किनको लगता है, कन्याओं माताओं को, पुरुषों की तो सृष्टि करने की बात ही नहीं है, पुरुषों को तो सरेंडर करने के लिए बाबा मुरली ने बोले ही नहीं है कि पुरुषों को बैठ करके सरेंडर करना है। भाइयों के लिए तो बाबा ने क्या बोला, शक्तियों की रखवाली करनी है, देखभाल करनी है। वो क्या देखभाल करेंगे, जो खुद ही अपनी रक्षा करने के लिए यज्ञ में सरेंडर होकर के बैठ जाएंगे। सरेंडर हो भी जाएंगे तो क्या सर अंडर कर देंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वो तो। तो कहने का मतलब यज्ञ के आदि में जो झगड़ा मचा, जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने जो बाबा ने मूल ने बोला, तो कोई तो कारण होगा ना विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने का। तो बाबा ने मुरली ने बताया कि आदि से झगड़े चले आ रहे हैं। किस बात पर झगड़े चले आए? पवित्रता के ऊपर झगड़े चले, क्योंकि वो राम वाली आत्मा तो मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो व्यभिचार को पनप नहीं देगी क्या? नहीं पनप नहीं देगी। तो आदि में भी झगड़ा मचा, क्योंकि कन्याएं माताएं थी, 300-400 कन्याएं माताएं थी, तो जब उनमें पुरुषों को जब रखा जाएगा तो क्या होगा? जरूर व्यभिचार बढ़ेगा। तो इसीलिए झगड़ा मचा। तो कहने का मतलब भिखारी की बुद्धि में ज्ञान ठहर नहीं सकता, इसलिए बाबा ने भी मुरली बोला है। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं पूरे पावन होंगे, अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाबा के पास बड़ी भारी युक्ति है। बाप के अंदर का प्यार रहता है, बाप का अंदर का, जिनको अंदर से प्यार बाबा करते थे उनको ऊपर से प्यार नहीं करते थे। मालूम था इनको ऊपर का स्नेह नहीं देंगे, इनको मान मर्तबा नहीं देंगे, खातरी नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन बाबा तो जानते थे अंदर से, अंदर से तो पूरे डलती हैं। हाँ, तो इस तरह जो वो किसी के अधीन नहीं रह सकते, श्रीमत के अलावा और किसी के अधीन नहीं होंगे। मेरे वर्षे का अधिकारी श्रीमत के अलावा और किसी के अधीन नहीं होने वाला। तो वो जो है इस्लाम धर्म की जो आत्मा होगी, उसके जो फॉलोअर्स होंगे और उनकी पत्नी अहिल्या, कहते ना अहिल्या नारकारी है, तो अहिल्या मना अहि मना सर्प, अहिल्या मना ले आई, जो सर्पों को ले आई, मना भिखारियों को बाबा से सन्मुख ले आई, तो क्या बनी जा करके? अहिल्या, पत्थर बुद्धि, क्योंकि भिखारी की बुद्धि में ज्ञान बैठ नहीं सकता। तो इस तरह जो है ये जो है इस्लाम धर्म की जो आत्माएं हैं, इनके अंदर सबसे ज्यादा इस्लामी में सबसे ज्यादा विचार चलता है, क्योंकि यह है गर्म मुल्क अरब खंड। हाँ, अगला दिखाया गया इसमें क्रिश्चियन धर्म, क्रिस्ट, उनकी निशानी बाबा ने क्या बताई? क्रोधी और साथ साथ ठंडे क्रोधी, और पाम पंच शो बहुत करते हैं। तो सबसे ज्यादा पाम पंच शो दिखावा, प्रदर्शनी करना, भेड़ चित्र, सबसे ज्यादा किस साइड दिखाते हैं? बंबई नगरी, वर्ल्ड के हिसाब से माया की नगरी किसको बताते हैं? अमेरिका को, यूरोप खंड, और भारत के हिसाब से बम्बई माया की नगरी क्या? हाँ, माया की नगरी, इसका मतलब जरूर माया बैठी पहले राज कहाँ करती होंगी? बम्बई में है माया की नगरी। जब तक मम्मा जीवित रही तब तक माया बेटी मम्मा के सामने नहीं आई, मम्मा ने सही छोड़ा, जैसे ही मम्मा ने सही छोड़ा वैसे ही वो कहाँ पहुँच गए? मालदेव पहुँच गए। तो बताया वो नगरी किसकी है? माया की नगरी है। तो उनकी जो बाबा ने मुरली बोला है
इस प्रदर्शनी की राय बाबा ने थोड़ी निकाली, ये तो रमेश बच्चे का इन्वेंशन है। फिर प्रदर्शनी को बाबा भी पास करेंगे, ये तो नहीं कहा कि पास कर दिया, पास करेंगे भविष्य में। त्रिभुवन ने आखिरी मत पर अनेक ढेर कटे चित्र बनाए, क्योंकि बाबा ने तो मुख्य चार चित्र बताए, बच्चे इन चार चित्रों में ही सारी नॉलेज भरी हुई है। मुख्य चार चित्र कौन से हैं? त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, झाड़ और बोला। तो ये जो चार चित्र हैं, ये है मुख्य, इनमें ही सारी नॉलेज भरी हुई है। ढेर के ढेर चित्र बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर चित्र बनाना, और वो तो जिस के अंदर वो आत्मा जो आधार मूर्त आत्मा है, वो तो ढेर के ढेर चित्र बनाती है, लेकिन दुनिया में कैसे? भक्ति मार्ग में वही आत्मा तो जड़ चित्र बनाती है, जिसने ज्यादा जड़ चित्र बनाए वो ही चित्र क्या बनाते हैं? चेतन प्रदर्शनी वगैरह जो बनाई तो उसी आत्मा ने बनाई ना, तो सबसे ज्यादा जो चित्रकारी दिखाई गई है वो बम्बई साइड में दिखाई गई है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा दिखाई गई है, और वो भी कौन सी साइड? बम्बई साइड में दिखाया गया। तो जरूर वो आत्मा जो होगी वो कहाँ से होगी, उसका कनेक्शन कहाँ होगा? बम्बई से ही होगा। इसलिए बाबा ने मुरली बोला है, अंग्रेज लोग न ज्यादा पतित बनते हैं, न ज्यादा पत्थर बुद्धि बनते हैं, न ज्यादा पारस बुद्धि बनते हैं। तो इस तरह जो है ये क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की आत्मा, इसकी निशानी बताई क्रोध, और ये क्रोधी भी है, ठंडा क्रोध अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। हाँ, जब मौका देखते हैं तब फिर ये अटैक करते हैं। तो इनका मुख्य गुण बताया क्रोधी क्रिश्चियन, क्योंकि ये ठंडा मुल्क है, और साथ साथ में काम वासना भी होती है, लेकिन इस्लामियों की तरह नहीं होती। जैसे इस्लाम धर्म में अरब खंड में ज्यादा विकारी लोग होते हैं, ये इतने विकारी नहीं होते, लेकिन बाबा बोलते हैं काम ऐसी क्रोध ऐसी, क्रोध है तो जरूर काम कांसी जरूर होगा। तो ये जो आत्मा है ये भी हमारे यज्ञ के अंदर जरूर बैठी होगी, जो बाबा मुरली बोलते हैं शरीर के आधार से बताया जाता है, शरीर के आधार से बताया जाता है ये इस्लामी है ये क्रिश्चियन है। इस्लामियों की पहचान क्या बताई? इस्लामी जो होते थे वो कैसे होते थे? काले होते थे, और क्रिश्चियन गोरे होते थे, गोरे चित्ते। तो अपनी पहचान आ जाएगी इसके अंदर, क्या झाड़ के चित्र में हम कौन से धर्म की आत्मा है, कौन सा धर्म किसको अच्छा लगता है, वो सब मालूम पड़ जाता है। हमारा कौन से धर्म से विशेष, कौन से धर्म के हमारे अंदर संस्कार दिखाई देते हैं मालूम पड़ जाता है। तो यह है क्रोधी क्रिश्चियन, अगला है लोभी मुसलमान। तो इनके अंदर क्या होता है? लोभ की वृत्ति होती है। लोभ के कारण इन्होंने क्या किया, भारत में जो सोमनाथ मंदिर था उसको 17 बार लूटा, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा। मोहम्मद का मतलब मोहम्मद, जिसके मुंह में क्या भर रखा है, मद भर रखा है। बाइबल का मतलब बाई जी का बल। हाँ, इनका जो क्रिश्चियंस का जो धर्म शास्त्र है उसका नाम क्या है? बाइबल, माना बाई जी के बल पर ही चलेंगे। जब तक बाई जी चलेंगे तब तक उनका बल, उनको बल मिलता रहेगा। और क्रिश्चियंस की एक और पहचान बताई बाबा ने मुरली में,
कि क्रिश्चियन लोग जब चर्च में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, साथ में किसको लेके जाएंगे? कुत्ता को लेके जाएंगे, नहीं तो बिल्ली को लेके जाएंगे। माना कुत्ता बिल्ली से इनका कोई ज्यादा कनेक्शन है, तब तक ये चर्चा नहीं करेंगे जब तक कुत्ता और बिल्ली को लेकर नहीं जाएंगे। तो कुत्ता किसे कहा जाता है? कामी। क्या कहता ना, ये तो बहुत कामी है। तो कामी कुत्ता और बिल्ली किसे कहा जाता है? लड़ाई लड़ने वाली, लड़ाई लड़ाने वाली बिल्लियां कैसे कहा जाता है? बिल्ली। तो ये माया बेटी, ये क्या बताया? बिल्ली। जैसे राम और सीता की जोड़ी है, ऐसी बाबा ने मुरली बोला माया रावण। क्या माया और रावण ये भी जोड़ी है, क्योंकि ये भी बिना संयोग नहीं सकती, ये कुछ काम कर नहीं सकते। तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं साथ में? उनको जरूर ले जाएंगे, तो उनका कनेक्शन है उनसे ज्यादा। माया बेटी से सबसे ज्यादा कनेक्शन किनका है? क्रिश्चियन धर्म की आत्मा का। अगला है लेडी मुस्लिम। तो ये जो है, ये लोभी तो होते हैं, कामी भी हैं, कामी के साथ साथ ये लोभी होते हैं, क्योंकि भिखारी तो हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए धन। तो धन तो होता नहीं है, तो रेगिस्तानी इलाका होता है, मरुस्थली इलाका होता है, बाद में तेल के कुएं निकले हैं, जो आज ये इतने धनवान हो गए, पहले कहाँ थे धनवान? तो इनकी जो नजर है, भारत जिसे कहते थे भारत सोने की चिड़िया, उसके ऊपर पड़ती है। और ये क्या करते हैं? खूब लूटते हैं, इतना धन ले गए, इतना धन ले गए, सत्रह बार आक्रमण करके चोरों की तरह आते हैं। क्या मुसलमान लोग क्या करते हैं? सारा धन लूट करके ले जाते हैं, लुटेरे। तो इनके अंदर लोभ की वृत्ति ज्यादा होती है। तो मुसलमान धर्म की आत्मा के लिए वहां ने इशारा दिया कि यहाँ मुसलमान आदि सबको श्री कह देते हैं। मतलब जो मुसलमान धर्म की आत्मा होगी उसका नाम पहले क्या होगा? गरु श्री होगा। मानो को 300-400 वर्ष हुआ होगा, उनके पीछे नहीं कहेंगे घोर अंधियारा था, कोई खिटपिट नहीं थी, मुसलमान बहुत दूर रहते थे धनवाद के साथ। क्या तो मुसलमान धर्म की आत्मा थी तो पहले दूर रहती थी, बाद में क्या हो गया? वो नजदीक आ गई। तो वहां ने कहा भारत जो उसका दुश्मन कोई है नहीं, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ाते हैं। जैसे मुसलमान लोग आए फूट डाली भारत को, आपस में लड़ा दिया। भारत माना राम सीता वाली आत्मा है, आपस में क्या किया इन्होंने? लड़ाई डाल दी। तो उनका काम क्या होता है? फूट डालो और राज्य करो। तो मैं फूट डाल दी भारत के अंदर। फिर बाबा ने बोला है कि मुसलमानों का मजहबी पागलपन बहुत पुराना है, मजहब के पीछे क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं। तो इस मुसलमान धर्म की आत्मा भी जरूर होगी। तो मुसलमान धर्म की आत्मा वो खाली इस्लामी तो फिर भी मूर्ति पूजक थे, पहले पहले शुरू शुरू मूर्ति पूजक करते थे, लेकिन ये मुसलमान जो है मोहम्मद गजनबी आए तो उन्होंने क्या किया? मूर्तियों का खंडन किया। कहते हैं सोमनाथ मंदिर में जो शंकर की मूर्ति थी उसको ये जाकर के काबा में अपनी मस्जिद में जो सीढ़ियां थी वहां पर क्या किया उसको? सीढ़ियों में उल्टा करके रख दिया और उसके ऊपर से जाया करता था, मतलब ये निराकार को मानने वाले हैं, निराकार को मानते हैं, मूर्ति पूजक नहीं होते, खंडन किया इन्होंने मूर्तियों का। तो इस तरह ये यहाँ पर एक औरत दिखाई गई है, क्या मुसलमान धर्म में औरत दिखाई गई है? तो मुसलमान धर्म में क्या होता है, मर जाते हैं तो क्या करते हैं, कब्र बना देते हैं। तो यज्ञ में भी ऐसा होता है, वो धर्म की आत्मा जो यज्ञ के अंदर आती है तो उसने भी कैसी शूटिंग कर दी, मम्मा ने जब बाबा के समय से ही छोड़ा तो उसकी कब्र नहीं बनाई गई, जला दिया। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने सही छोड़ा तो उस समय यज्ञ की इंचार्ज कौन थी, तो क्या बना दी यहाँ पर, कब्र बना दी। तो बताओ ये कब्र बनाने की जो शूटिंग है तो कौन सी आत्मा करेगी, जरूर मुसलमान धर्म की आत्मा होगी, इसलिए इसको दिखाया गया पीट करे बैठी है, भारत से पीट करे बैठी है, इसका मतलब विमुख, सम्मुख नहीं होगी, क्या होगी, विमुख। इस तरह जो मुसलमान धर्म की आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, इसलिए वहां बोलने में पहले मरेंगे इस्लामी,
वही आत्मा वहां जाती
है ना, इस्लाम मतलब निरंकारी होते हैं, त्यागी होते हैं, जिसके पीछे भाव में जितना त्याग तपस्या थी, त्यागी था, त्याग की भावना थी। और ये मुसलमान क्या होते हैं, ये लेडी होते हैं। तो इस तरह जो है पहले मरेंगे इस्लामी, फिर मरेंगे बौद्धी, मुरली में बाबा ने ऐसा बोला है, और मुसलमान तुम्हारे साथ मरेंगे, क्या जीते जी मरने की बात है, यहाँ कोई फूल मरने की तो बात है नहीं, तो जीते जी मरेंगे जो ये साथ में मरेंगे, पहले नहीं मरेंगे। तो इस धर्म की आत्मा के सामने यहाँ पर राम की मूर्ति भी दिखाई है, मुसलमान धर्म दिखाया ना, इसके साथ ही राम की मूर्ति भी दिखाई दी, मतलब राम वाली आत्मा का उस मुसलमान धर्म की जो आत्मा है आधार मूर्त, जरूर उसका कोई कनेक्शन यहाँ है। तो इस तरह जो है ये मुसलमान धर्म वाली आत्मा, ये निराकार उपासक है, ये जितने भी है तो ये सब निराकार को मानने वाले, इब्राहिम क्राइस्ट मोहम्मद, ये निराकार को मानते हैं, साकार को इतनी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि है विधर्मी, विधर्मी जितने होते सब निराकार को मानते हैं, बिंदु को याद करने वाले हैं। अगला है मोही महर्षि, आर्य समाज द्वारा जो है मुसलमान, आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्थापन किया गया धर्म आर्य समाज, तो ये जो है इनके मुख्य गुण क्या बताया, मोह, और वो भी किससे मोह, प्रजा से मोह। तो इनके लिए बाबा ने बोला है, शास्त्र को जानने वाला आस्तिक नहीं वरन बाप को जानने वाला आस्तिक है। शास्त्र तो ढेर सारे शक्ति है, शास्त्र कौन लिखते हैं, लिटरेचर जो सबसे ज्यादा कौन छापते हैं, आर्य समाज। तो वहां पर भी भक्ति मार्ग में भी और यज्ञ के अंदर भी वो जो आर्य समाज धर्म की आत्मा होगी सबसे ज्यादा लिटरेचर छापने वाली होगी। फिर उसके लिए बाबा ने बोला है, जो अच्छा पहले नंबर वाला शंकराचार्य होगा वह थोड़ा ही भक्ति करता होगा, वो तो पिछाड़ी का है तो भक्ति भी कर रहे हैं, पहले गवर्नमेंट सर्वेंट था, क्या वो जो आत्मा है आर्य समाज धर्म की जो आत्मा है वो पहले क्या थी, पहले गवर्नमेंट सर्विस करती थी आत्मा। तो बाबा ने उसको यज्ञ में रखा, 200-300 रुपए देते थे बाबा, तो इशारा दिया बाबा ने, पहले क्या था वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसकी निशानी बताई। किसकी रंग को गद्दी मिली है, किस किस की गद्दी मिली, जिसने जैसी गद्दी मिल गई। हाँ उनका शिष्य लायक ना होगा तो उनको गद्दी दे दी, मतलब लिटरेचर की जो गद्दी दी वो उनका शिष्य माने बाबा जो चाहते थे वो तो विश्व किशोर को ही चाहते थे, लेकिन वो लायक नहीं थे, उस हिसाब से ज्ञान में होशियार नहीं थे, इसलिए गद्दी किसको दी, लिटरेचर की गद्दी दे दी। फिर बाबा ने बोला राजा लोग प्रजा से कर्जा लेते हैं, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में क्या होता था, निजाम बादशाह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कर्जा लेती थी, राजा लोग प्रजा से कर्जा लेते हैं। अभी देखो प्रजा साहूकार है, कहते ना राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, तो राम वाली आत्मा राजा भी बनती है, साहूकार भी बनती है और प्रजा भी बनती है, तो संगम युग पर राम वाली आत्मा क्या होती है, ज्ञान धन से साहूकार होती है और गवर्नमेंट कंगाल, क्या हमारी गवर्नमेंट कौन सी है, इसी में गवर्नमेंट, तो वो ज्ञान धन से क्या है कंगाल, ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं, तो ज्ञान धन में सबसे ज्यादा जो साहूकार है वो कौन है, तो बोला गवर्नमेंट कंगाल है, लोन लेती है, सारा एडवांस नॉलेज इनके पास पहुंच गई, तो ये सारा ये क्या हुआ, इसलिए आने का जो यहाँ का जो धन होगा ज्ञान धन वही जाकर के आगे चल करके द्वापर में क्या बन जाएगा, उसकी धन बन जाएगा, तो राजा से प्रजा से राजा लोग कर्जा लेते हैं तो कंगाल है, कौन गवर्नमेंट कंगाल है, उनके पास तो मोदियों का स्टॉक भी नहीं है पूरा 18 वर्ष जो बाबा ने मुर्गियाँ सुनाई उसका भी स्टॉक नहीं है, 2-1 वर्ष का वही बार बार रिपीट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, वही मांगते रहते हैं कि आपके पास मुर्गियों का स्टॉक हो, पुरानी मुर्गियाँ हो तो सब हड़ाबूज में भेज दो, तो गवर्नमेंट क्या हुई पड़ी है, ज्ञान धन में तो कंगाल हुई पड़ी है, तो लोन लेती रहती है, सारी एडवांस लगेगी उनको दी जा रही है, फिर भी वो नहीं मान रहे, तो उनके सर के ऊपर तो लोन चढ़ रहा है ना, तो सती में भी ऐसा होता है, सती में भी 8वें नंबर का नारायण होगा, वो जो है इस समय वो राम वाली आत्मा कहीं साहूकार के यहाँ जन्म लेगी और वो लोन लेगी इससे 8वें नंबर का नारंग, और इतना लोन लेगी कि उसको अपनी राजाई देनी पड़ जाएगी, तो शूटिंग भी यहीं पर होती है कि उसके ऊपर इतना लोन चढ़ जाएगा कि लास्ट में जब वो आएगा तो उसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, तो ऐसा सत्यु में भी ऐसा होता है, जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनकी प्रजा बहुत साहूकार होती है, फिर बाबा ने बोला कि महाराजा का टाइटल तो गया, वो तो बनना था उसको बन गया, 76 में बताया ना लक्ष्मी नारायण का जन्म हो गया, तो नारायण बनने की तभी तो गई, वो तो टाइटल गया महाराजा का टाइटल तो गया, फिर भी चाहे तो कांग्रेस को लाख दो देवे तो टाइटल कायम हो सकता है, किस चीज का टाइटल, कौन सी कांग्रेस कौन सी गवर्नमेंट को दिहाने सरकार को क्या दे, लाख दो लाख, तो लाख दो लाख तो कोई भी दे देगा, तो क्या उसको टाइटल मिल जाएगा सर, 8वें नंबर का नारायण बन जाएगा सर, तो बाबा की तो देहत की भाषा है, देहत का बाप देहत के बच्चे से देहत की बातें करता हूँ, उसमें जो हद के बच्चे होते हैं वो हद में लगा लेते हैं, तो इस तरह जो है वो बोला कि लाख दो लाख दे, माने जब लाख में वो आत्मा आएगी तो अपने साथ लाख दो लाख प्रजा साथ में लेकर के आएगी, और वो सारी प्रजा क्या करेगी, राम वाली आत्मा के आगे आसन कर देगी। तो उसको आठवें नंबर का नारायण बनने की पदवी प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो है आर्य समाज जी से बाहर बोलते कौरव कांग्रेस, कौरव को मतलब कौओं की तरह शोरगुल ज्यादा करते हैं, ये है धर्म निरपेक्ष। हमारी आजकल की गवर्नमेंट कैसी है, धर्म निरपेक्ष राज्य, कोई भी धर्म की हमको अपेक्षा नहीं कि तुम क्या किसी भी धर्म को मानो, लेकिन क्या करो हमको वोट दो। तो ये इनके अंदर भी यही संस्कार होते हैं, प्रजा की वृद्धि करना। तो आर्य समाज धर्म में वही आत्माएं जाती है जो कन्वर्ट कमजोर आत्माएं होती है, जैसे इस्लाम धर्म आया तो पहले तो देवता धर्म था ना भारत में, जब ये आत्मा आई इस्लाम धर्म में विचार शुरू किया तो राम वाली आत्मा ने क्या किया, उसको खदेड़ दिया, तो वो जा करके अलग खंड में ये विचार चलाना शुरू कर देती है, माना अपने धर्म से उसको हटा दिया, अपने धर्म में एक बार जो दूसरे धर्म में चला गया फिर उसको अपने धर्म में कभी नहीं अपनाया। जैसे कोई कन्या किसी दूसरे धर्म के शादी कर लेती है तो हिंदू धर्म कभी भी उसको अपनाता नहीं है, तो ऐसे ही वो दूसरे धर्म में चले गए आत्मा तो भारत में, तो भारतवासी है तो कभी भी उनको अपने धर्म में अपनाया नहीं, क्योंकि यहाँ तो व्यविचार व्यविचार में सुख कहाँ से मिलेगा। तो ये आत्मा से कन्वर्ट हो जाती है, जब कई आता क्रिश्चन धर्म आता तो उसमें चली जाती है, वहां पर भी क्या होता है, वो तो क्रोधी है, उनके पास तो इसमें प्यार होता ही नहीं, बुद्धिवादी है, दिल होता ही नहीं, तो क्रोधी, तो यहाँ पर भी क्या होता है, वो आत्मा नहीं जीत पाती। फिर आता है मुस्लिम धर्म, फिर मुस्लिम धर्म में जाती है, इस तरह कन्वर्ट होती होती। जब आई समाज ये आते हैं उन्होंने क्या कहा, कोई किसी भी धर्म का वो आकर के हिंदू बन सकता है, इस समय वो आत्मा है उनको मौका मिल जाता है और वो हिंदू बन जाते हैं। लेकिन बाबा ने क्या बताया, जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो कच्ची कमजोर आत्माएं क्या होती हैं, कन्वर्ट होती हैं, जो अपने धर्म का पक्का होता है कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। तो इसलिए बाबा को कई बार मूल्य में बोलते हैं कि कन्वर्ट हुई आत्माएं पिछाड़ी में अपने धर्म में आवेंगी, क्या जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं तो फिर अपने धर्म में आएंगी, कैसे आएंगे, क्योंकि देवताएं देवता से हिंदू बने, हिंदू से और धर्म में कन्वर्ट हो गए, जो देवताएं थे वो ही बन गए हिंदू, हिंदू से फिर और धर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, हिंदू ही अपने धर्म की गिलानी करते हैं और दूसरे धर्मों को अपनाते हैं, दूसरे धर्म के नहीं, दूसरे धर्म के हिंदू नहीं बनते, हिंदू ही आकर के क्या बनते हैं, दूसरे धर्मों को अपनाते हैं, तो गिलानी करने वाले कौन होगा, हिंदू ही होगा। तो कहने का भाव यह है कि ये जो आर्य समाज धर्म की आत्माएं जो है ये कच्ची कमजोर आत्माएं ही कन्वर्ट होती है, जो एक धर्म को छोड़ सकती है तो दूसरे धर्म को भी छोड़ सकती है, इस तरह छोड़ते ही चले आते हैं। फिर लास्ट में जब आर्य समाजी आते हैं तो उनको मौका मिल जाता है भारत में आने के लिए और ये हिंदू बन जाते हैं, लेकिन ये है कमजोर आत्माएं, जैसे इस्लामी आए क्रिश्चियन आए, तो इन्होंने जोर जबरदस्ती करके अपने धर्म को अपने धर्म का बनाना चाहा, लेकिन जो इनके धर्मों को अपना लेते हैं जो कमजोर आत्मा ही, जो नीच कैटेगरी की आत्मा ही थी, शरीर कास्ट जैसी, वही इन धर्मों में जाती है, लेकिन जो क्षत्रिय घराने की आत्माएं थी, ब्राह्मण धर्म की आत्माएं होती थी, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हुए, उन्होंने अपने धर्म को
छोड़ा नहीं, कहते ना धरत पर ये पर धर्म न छोड़िए। अपने धर्म में भले मर जाए वो अच्छा, लेकिन दूसरे के धर्म में कभी भी जाना नहीं चाहिए। तो वो तो इतनी मजबूत आत्मा है और ये तो कच्ची कमजोर आत्मा है। तो इस तरह ये आर्य समाज धर्म में जो कच्ची कमजोर आत्मा ही जाती है, उनके लिए बाबा क्या बोलते हैं, कच्छावतार मच्छावतार। कच्छावतार मच्छावतार के लिए बाबा मुरली में क्या बताते हैं, कच्छ मच्छावतार आदि सब पानी में रहते हैं। क्या इनकी निशानी क्या बताई इन कछुओं की अगर और मगर मच्छों की, ये पानी में रहेंगे माना ज्ञान जल में रहेंगे, आश्रमों के वातावरण में रहेंगे। जब तक ये आश्रमों के वातावरण में रहेंगे तब तक तो इनकी अवस्था ठीक रहेगी, और जैसे इनको बाहर निकाला जाए तो ये इनकी अवस्था क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो बाहर का राम कृष्ण जैसी आत्माएं तो धरनी पर रहती है, मतलब धरनी का आधार लेती है, कन्या माताओं का आधार लेती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जल में रहते हैं। तो इन्हें कहते हैं कच्छ अवतार, कच्छ माना कछुआ। कछुआ क्या करता है, कछुए की पीठ इतनी मजबूत होती है उसको कितने भी ज्ञान डंडे मारो लेकिन वो उसकी बैकबोन इतनी मजबूत होती है वो टस से मच नहीं, अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेगा। और मच्छ माने मगरमच्छ, मगरमच्छ ये नास्तिक, ये क्या करते हैं, छोटे मोटी मछलियों को तो यूं ही हाउ अप कर लेते हैं, और वो भी कौन सी मुंह में आती है, मछली, मछली के अंदर से क्या निकलती है, दुर्गंध निकलती है, क्या विकारों की बदबू निकलती है। जो शेरनी शक्तियाँ होती हैं, वो इनके मुंह में नहीं आती हैं, वो तो इनको क्या देती हैं, सीख देती हैं, शक्तियाँ जैसे गाँव बोलता है, शेर की शक्तियाँ होगी तो मुकाबला करेंगी और अबला होगी तो क्या हो जाएगी, इनके अंदर में आ जाएगी। तो इस तरह जो है ये आर्य समाजी मोह, इनके अंदर मोह के संस्कार ज्यादा होते हैं, इसलिए कहते हैं मोह सकल व्याधि कर मूला, सब बीमारियों की जड़ क्या होती है, मोह। तो इस तरह ये पांच जो बाबा मुरली बोलते हैं रावण के सिर, क्या वो तो बोल देते हैं रावण जो क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन इनका जो रूप है जरूर इन्होंने ऐसी अक्त की है, जैसे असुरों के मुख दिखाते हैं चेहरे दिखाते हैं, तो जरूर इन्होंने क्या पार्ट बजाया ना, तब तो उनका चेहरा बना। तो कहते हैं शंकर जी के लिए कहते हैं कामदेव को भस्म किया,